आराम है या थकावट है
जी
और तीसरा जो भूख है,
जी
अगर ये तीनों चीजें इंसान इससे मुआवरा हो जाए
जी
जो इसको फानी होने का एहसास दिलाती हैं, जो इसकी औकात दिलाती हैं,
जी
अगर ये इन तीनों चीजों से मुआवरा हो जाए तो क्या वो खुदाई ताकतें उसमें आ सकती हैं? यानी जैसे आप देखेंगे सिकंदर आजम जो था
जी जी
वो इन चीजों पे बड़ा गौर करता था कि ये तीनों चीजों से, बल्कि वो तंग भी रहा। इसी तरह जितने भी आप शख्सियात हैं
जी जी
जिन्होंने बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, जितने भी मशाइख हैं
जी
ये तमाम जो है वो इन तीनों चीजों से मावरा हो के ही वो दूसरे इंसानों से अफजल हुए। तो मैं असल मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोई इंसान, अभी मैं बींग अ मुस्लिम अगर कुछ इस तरह की कोई कोशिश करता हूँ तो क्या ये आउट ऑफ इस्लामिक होगा? यहाँ के इस्लाम में कुछ इस तरह की लचक है कि मैं इन चीजों से हट के?
अब आपने इससे पहले फरमाया ना कि खुदाई सिफात को जब उसके अंदर को पैदा हो जाएंगे, इस तरह की बात मैं समझा हूँ आपकी?
हाँ,
उसका मकसद ये है
खुदाई पैदा से राव के, क्या मुझे इजाजत है कि मैं कोई ताकत हासिल कर सकूँ?
मैंने कहा उसकी तस्री आपसे कर लूँ। राम जी साहब,
देखिए बात यह है कि अगर इन चीजों से इंसान मावरा हो जाए, जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इंसान ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो इस मामले में अपनी कमजोरियों पर काबू पा ले। यानी दोनों चीजें होती हैं ना, आराम भी भूख भी, बहुत सी चीजें बाज औकात हम पर गलबा पा लेती हैं और इतना ज्यादा गलबा पा लेती हैं कि हम अपने फ़राइज़ भी अदा नहीं कर सकते। तो लोग रियाजत करके अपने आप को इस काबिल कर लेते हैं कि वो कम आराम करें और ज्यादा काम कर लें, कम खाएं और ज्यादा बड़े मकासद के लिए कोई जद्दोजहद कर लें। तो ये तो ठीक है, दुनिया में ये होता रहता है, लेकिन इसको अगर आप उस दर्जे तक ले जाएंगे कि जिसके बाद हुकूक तलफ होने शुरू हो जाएं, बजाय इसके कि आपके अंदर ताकत आए आप और ज्यादा कमजोर हो जाएं, तो ये तो कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना ना हुआ। जिन बड़े लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये किया कि जिसको आप कहते हैं ना सुस्ती और तकासुल, इस पर काबू पा लिया। आराम वो करते थे, लेकिन इतना करते थे जितनी जरूरत होती है, काम करते थे। तो काम और आराम के माबैन, भूख के माबैन और जद्दोजहद के माबैन एक तवाज़ुन कायम करके रहना, ये इस्लाम का मंशा है।
लेकिन एक और बात भी तो है ना, हमारे यहाँ ये तसव्वुर भी रहा ग़ालिबन सूफिया के यहाँ कि ये चीजें इंसान के हैवानी वजूद का तकाजा है, तो इंसान का कोई एक रूहानी वजूद भी है, उसको चाहिए कि उसको बुलंद करने के लिए इन चीजों से ज्यादा ज्यादा उठ जाए।
इसकी कुरान मजीद ने नफी कर दी बिल्कुल। देखिए
ये ठीक नहीं है बात।
कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है उसके तवाज़ुन को कायम रखने ही में उसका सही शरफ है। यानी आपको आराम भी करना है, आपको काम भी करना है, आपको खाना पीना भी है और आपको जिंदगी के दूसरे मकासद के लिए जद्दोजहद भी करनी है। इनके माबैन एक अच्छा तवाज़ुन कायम करना, ये चीजें आपके लिए मसला ना बन जाए, हिर्स ना बन जाए, हवस ना बन जाए या आप पर सवार ना हो जाए, आप इन्हीं के अंदर हमेशा गलतान ना रहें, इससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। मजहब की तालीम हमें जिस जगह पर खड़ा करती है वो असल में एक मुतवाज़िन मकाम है। इसी वजह से कुरान मजीद ये कहता है कि हमने इस पूरे जमीन व आसमान में एक मीज़ान रख दी है, अल्लाह तत्गो फिल मीज़ान, तुम भी इस तवाज़ुन में खराबी पैदा ना करो। तो अल्लाह के पैगंबरों का उस्वा हमारे लिए बेहतरीन है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार किया, आपने आराम भी किया और आपने अल्लाह की इबादत भी की, आपने जद्दोजहद भी की और आपने बहरहाल खाया भी पिया भी और दूसरी जिंदगी की जरूरियात भी पूरी की। तो हमारे लिए उस्वा अल्लाह के पैगंबर होने चाहिए। जो गैर मुतवाजन शख्सियात बाज वजूद में आ जाती हैं वो किसी ना किसी का हक तलब कर देती हैं। यानी अगर फर्ज कर लीजिए कि वो कोई बड़ा कारनामा भी अंजाम दें तो उसके साथ वो अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने रिश्तेदारों और इज्जा के हुकूक भी तलब कर देते हैं। ये बात अलबत्ता बिल्कुल ठीक है कि आम हालात में हम इन चीजों के असीर होकर रह जाते हैं। इनकी मकदार उतनी होनी चाहिए जितनी एक हमारी जरूरियात से मुतल्लक है, ताकि हम आगे किसी बड़े मकसद के लिए काम कर सकें। तो अगर आप यहां खड़े हैं तो बहुत मुतवाजन जगह पर खड़े हैं, लेकिन अगर इससे आगे बढ़ गए हैं तो फिर आप एक ख्वाब देख रहे हैं और शर्मिंदा है ताबीर।
लेकिन वो जो बात आपने फरमाई कि ये कोई इस्लाम ने उसको पसंद नहीं किया, लेकिन वो तो हमारे सूफिया के यहाँ बहुत ज्यादा रायज है, बल्कि वो इस्लाम के बाहर भी आप देखेंगे वो लोग जो एक खास तरह की तपस्या करते हैं, अलहदगी दुनिया से अख्तियार कर लेते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तो वो कुछ मकसद उसका क्या होता है फिर?
देखिए बात यह है कि उनका फलसफा बिल्कुल अलग है। वो तो ये कहते हैं कि इंसान की असल हकीकत वो नहीं है जो हमें नजर आती है। इंसान की असल हकीकत यह है कि ये ज़ाते खुदाबंदी है जिसका जहूर इस सूरत में हुआ है। लिहाजा ये जो पर्दा डाल दिया गया है जिसको आप मादी वजूद कहते हैं, इससे आप जितने मावरा हो जाएंगे आप असल हकीकत के करीब हो जाएंगे। तो इरफान हासिल करने का जरिया यही है। ये सूफियाना मजाहब में कदर मुश्तरक है। उनका मकसद ये है। कुरान मजीद ने जो इल्हामी मजहब پر مبنی ہے، اس نے ایک بالکل دوسری بات کہی ہے. وہ ہمیں ایک متوازن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کا منشا بتاتا ہے، رحبانیت جیسی چیز پر بھی یہ تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کبھی لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے اس کو خود ایجاد کیا، اور پھر مزید تبصرہ کرتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں پھر اس کے حقوق بھی وہ ادا نہیں کر سکتے.